प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
वंदे प्रभु, वंदे मसीह, शत शत वंदना, वंदे प्रभु, वंदे प्रभु,
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि किस प्रकार श्रेष्ठ गीत को मसीह के प्रेम के साथ तुलना किया गया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन का अध्ययन फिर से रेडियो के माध्यम से कर सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके अपने प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से हम अध्ययन आरम्भ करते हैं। प्रार्थना है कि हर एक को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि एक एक श्रोता भाई बहन इस पुस्तक की उन बातों को समझ सके, जान सके और अपने जीवन में लागू कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है, उन माता पिताओं के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें शांति प्रदान कीजिए। यदि किसी परिवार में फूट है, ईर्ष्या है, आप उनका भी समाधान करें। आज अपने वचन के द्वारा से हम सब से बोले और बातचीत करें। संसार के हर एक बुराइयों से, बुरी चिंताओं से आप सबकी रक्षा करें। धन्यवाद देते हैं पिताजी हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि हम स्वयं परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, वह हमें खींचता है। अतः जब हम कहते हैं कि मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, तब वह कहता है राजा मुझे अपने महल में ले आया है। महल से अभिप्राय है उसका महापवित्र स्थान, भीड़ और शोर से दूर। यह स्थान उसने चट्टान काटकर हमारे लिए बनाया है, जहां वह हमसे संबंध स्थापित करता है और हमें अपने हाथों की सुरक्षा में नीचे रखता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, जहां पर वह कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ओह, उसके साथ सहभागिता का यह कैसा सौभाग्य है। परंतु हम फिर भी यशाया के साथ पीछे हटकर कहते हैं, यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, परंतु राजा मुझे अपने महल में ले आया है, उसी ने मुझे मुक्ति दिलाई है, उसी ने वेदी पर से अंगारे उठाकर हमारे होंठों को छुआ है, उसी ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। आगे हम पढ़ते हैं, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हमें अपनी कलीसियाओं में और अपने जीवन में अधिक आनंद की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद में यीशु कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आगे यूहन्ना कहता है, 1 पत्री 1:4 में, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु नाम हमारे लिए परिपूर्ण जीवन जीने का अर्थ रखता है। मेरे मित्रों, हम आराधना में जाने का दिखावा त्याग दें, हम यह कहना भी छोड़ दें, मैं इस कलीसिया वर्ग का सदस्य हूं और मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ है। मुख्य बात यह है कि क्या आज प्रभु आपके निकट है। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। आज लाखों लोग शराब पीते हैं क्योंकि उन्हें जीवन का सामना करने के लिए कुछ चाहिए होता है। उन्हें अकेलेपन के कारण शराब चाहिए, उन्हें व्यापार करने के लिए शराब चाहिए, उनके लिए जीवन एक जटिल समस्या है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप जानते हैं कि वह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में अंतर्वासी पवित्र आत्मा द्वारा लाया जाता है। जी हाँ, वह हम में अपने प्रेम को सच बनाना चाहता है, वह हमें अपना प्रेम प्रकट करना चाहता है। यह शराब पीने से कहीं अधिक उत्तम है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है कि हम दाख मधु से मतवाले न बने वरन परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। और 5 अध्याय उसके 19 पद में वह कहता है, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, मैं गा नहीं सकता परंतु मुंह से कह तो सकता हूँ, आप भी यदि कहें तो हानि न होगी। सच तो यह है कि विश्वासियों के मुंह से यह की स्तुति करो सुनना अच्छा लगता है। हमें आज यह की स्तुति करना है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। यह वे कौन है? ये वे लोग हैं जो उसके हैं। वे कहते हैं, मुझे खींच ले। उसने उन्हें पांव पर खड़ा किया है और उन्हें जीवन की दौड़ दौड़ना है तथा अपने उद्धार के कर्ता एवं विश्वास के पूरा करने वाले यीशु को निहारना है। मेरे मित्रों, मसीही जीवन प्रेमालाप है। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राण की आहुति दे दी। अब वह हमसे कहता है, मुझे तेरे प्रेम की आवश्यकता है। यह मुहर लगी बात है। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते तो व्यर्थ का दिखावा ना करें, सत्य निष्ठा से इस ढोंग का त्याग करें। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते तो यह सब अर्थहीन नाटक है। अब विश्वासी के प्रेम की प्रतिक्रिया को देखें। भजन संहिता 63 उसके 1 पद में भजनकार कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे मित्रों, क्या आप परमेश्वर के प्यासे हैं? प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 37 पद में, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। मैंने पवित्र स्थान में तुम पर दृष्टि की, भजन संहिता 63:2 में लिखा है। तब हम देखते हैं भजन संहिता 63:3-5 में, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। ओह मेरे मित्रों, हमारे होंठ उसकी स्तुति में व्यस्त हो जाएं, क्या ही भला है। भजन 63:7 में लिखा है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि मत्ती रचित सुसमाचार 23:23 उसके 37 पद में यीशु ने कहा था कि वह यरूशलेम वासियों को अपने पंखों के छाव में ले लेना चाहता था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। इससे प्रभु यीशु का प्रेम और असहायों के लिए सुरक्षा की इच्छा प्रकट होती है। भजन संहिता 63:8-11 में लिखा है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई परमेश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। मसीह के प्रति विश्वासी की भक्ति का कैसा उत्तम चित्रण यहाँ पर हमें दिया गया है। तो मित्रों, आइए हम आगे देखेंगे कि धूप में झुलसी दासी बालिका को हम देखेंगे। आप मेरे साथ श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5-6 पद को पढ़िए। लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबों के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ, मुझे इसलिए न घुर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाग की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। केदार के तंबुओं, ये तंबू काली भेड़ और काली बकरी की खाल से बने होते थे। वहां पर आज भी खाना बदोशों के काले तंबू देखे जा सकते हैं। वह काली जाति की नहीं थी, वह तो सुनेम वासी थी, एक यहूदी लड़की थी। उसके माता पिता सुलेमान की दाख की बारियों में से एक का किराया देकर फसल उगाते थे। यह बालिका दाख की बारी में काम करती थी, इस कारण उसकी चमड़ी धूप में झुलस गई थी। मैं धूप से झुलस गई हूँ, वह काली तो थी परंतु सुंदर थी। काले रंग में भी सुंदरता होती है यदि उसका मन प्रभु के साथ सही संबंध में हो। चमड़ी का रंग महत्व नहीं रखता, मन की दशा महत्वपूर्ण होती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण चमड़ी को काला करती है, वह बादलों के पार भी आ जाती है। कैंसर के रोगियों को डॉक्टर धूप से बचने का सुझाव देते हैं, बादलों में भी उन्हें सिर ढांक कर रखना होता है। पराबैंगनी किरण चमड़ी को जला देती है और कैंसर उत्पन्न करती है। मेरे मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बिना किसी आवरण के परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मसीह की धार्मिकता ओढ़े बिना आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। यह हमारी सुरक्षा है, मसीह के पंखों की छांव में रहना यही है। आपको और मुझे प्रभु यीशु की धार्मिकता के आवरण की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। अब हम अपने इस सांवली लड़की की बात करते हैं। उसकी माता के पुत्र उससे अप्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसे दाख की बारी में काम करने के लिए भेजा। वह कहती है, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रक्षा नहीं की। यह वधू का अपना चित्रण है। उसमें प्राकृतिक सुंदरता थी, वह अपनी प्रशंसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अपनी देखभाल नहीं करती थी। उसके पास कोई भी ब्यूटी पार्लर जाने का समय नहीं था। वह अपनी सुंदरता को निखारने के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। उसके पास बहुत काम था, उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता था। मेरे मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य की सुंदरता कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए परमेश्वर हम में रुचि रखता है। सच तो यह है कि हम कुरूप हैं, झुलसे हुए हैं। हमारा रूप रंग परमेश्वर को आकर्षित नहीं करता है, परंतु वह कहता है कि हमें अपनी सुंदर वधु बनाएगा। इफिसियों के पत्र 5 अध्याय में हमें यही अद्भुत चित्रण दिखाया गया है। पतियों के लिए मसीह उस प्रेम का उदाहरण दिया गया है जो वह कलीसिया से रखता है। इफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसके 25 से 27 पद में हम पढ़ते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखा आपने प्रभु यीशु को कि वह हमें ब्यूटी पार्लर ले जा रहा है। वह हमें निर्दोष और झुर्री रहित वधु बनाना चाहता है जिसमें पवित्रता भरी हो और एक भी दाग ना हो। मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चारागाह के बारे में। कहानी आगे बढ़ती है। वह सुनेमी लड़की उस चरवाहे से बात करती है जिससे उसकी अभी भेंट हुई है। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? वह बड़ा ही विचित्र चरवाहा था। उसके पास भेड़ें नहीं थी। उसने उसकी भेड़ों के बारे में पूछा तो उसने बात टाल दी। अब हम कुछ गहराई में देखेंगे तो बड़ी अनमोल बात को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 14 और 16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हम सब उस सुनेमवासी लड़की के समान प्रश्न करते हैं, मेरी और भी भेड़े हैं, अन्य जातियां क्या वे सब खोई हुई हैं? हम जानना चाहते हैं कि क्या वह उधार प्राप्त है या उधार से रहित है। हम दूसरों का न्याय करते हैं। किसी के उधार का प्रश्न करने से अच्छा तो यह है कि हम सुनिश्चित करें कि हम उसकी भेड़ें हैं या नहीं। यह हमारी चिंता का विषय है। आज बहुत सारे लोग दूसरों के बारे सोचते हैं और अपने घर के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। हम आगे देखते हैं कि चरवाहा उससे उत्तर देता है। श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसके 8 पद में, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। यही प्रभु यीशु का हमारे लिए भी उत्तर है, बकरियों के बच्चों को चरा। बकरी के बच्चों को भोजन की आवश्यकता होती है और मेरे मित्रों, हम सब इसी वर्ग में हैं। पत्रस कहता है, 1 पत्रस के पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। चरवाहों के तंबू के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। विश्वासियों को चरवाहों के तंबुओं के पास अपना भोजन खोजना है, क्योंकि वहां हरी हरी घास होती है। निश्चय ही यह परमेश्वर का वचन है जो हमारा भोजन है। हम अन्यों को भोजन करा के परमेश्वर के वचन के आनंद की चर्चा नहीं कर सकते यदि वह हमारा आनंद न हो। इसलिए हमें स्वयं भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर मनन चिंतन करना है। हमें परमेश्वर के वचन पर पोषित होना है। इसके पश्चात हम दूसरों को वचन सुनाएंगे। मसीह की दुल्हन जो भविष्य में एक दिन प्रभु के पास होगी, उसे आज परमेश्वर के वचन का प्रसारण करना है। हम विश्वासियों की देह तो हैं, परंतु हम वचन के प्रसारण से चूक जाते हैं। दूसरों को हम ये वचन नहीं पहुंचा पाते हैं। लिखा है, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह ना जानती हो। जी हाँ, हमारे पास बहुत सी बातों का उत्तर नहीं है। अपनी युवावस्था में हर बात पर उत्तर खोजने का प्रयास युवक करते हैं। मुझे बहुत ही उत्तम सुझाव दिया गया है, तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे ज्ञान के लिए बाधा का कारण ना हो। क्या आप जानते हैं कि मसीह आपके पापों के लिए मरा? क्या आप जानते हैं कि आप उसमें विश्वास रखते हैं? क्या आप उसमें विश्राम पाते हैं? आप अय्यूब के समान कह सकते हैं, अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय उसके 25 पद में, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और आप पौलुस के समान भी कह सकते हैं, दूसरा तीमुथियुस के पत्री 1 अध्याय उसके 12 पद में, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। पौलुस यह तो कहता है, परंतु वह यह नहीं कहता कि वह पूर्व नियत परमेश्वर के चुनाव के बारे में जानता है। अतः हम अज्ञान को हमारे ज्ञान में बाधक न होने दें। अपने भेड़ों को चराना निश्चित करें, यह आपका उत्तरदायित्व है। मेरे मित्रों, एक महिला है जो बिस्तर में पड़ी है, परंतु वह प्रति माह लगभग 1000 लोगों से संपर्क करके हमारे रेडियो कार्यक्रम की जानकारी देती है। वह एक महान प्रचारक है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके मन में अनेक प्रश्न होंगे, परंतु मैंने उसके एक ही पत्र में प्रश्न नहीं देखे। वह प्रश्न पूछने में समय नहीं गंवाती है। वह परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में समय लगाती है। आप चलते फिरते होंगे, आप स्वस्थ होंगे, लेकिन क्या आप किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि चरवाहा उस लड़की से यही कहता है, तुझे अन्य भेड़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तू बस अपनी बकरियां चरा। सुनिश्चित करें कि आप उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। हम आगे देखते हैं, वधु का सौंदर्य बढ़ाना। चरवाहा तुलना करके कहता है, श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय उसके 9 पद में, हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। जैसा मैंने पहले कहा है कि प्रिय का अर्थ है वर वधु से बात कर रहा है। जब प्रेमी शब्द आता है तो वधु वर से बात कर रही है। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। जब मूसा इसराइल के वंशजों को मिस्र से निकालकर लाल सागर तक ले आया, तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे फिरौन के रथ तेजी से बढ़े चले आते थे। उन पर मिस्र का झंडा लहरा रहा था। वह एक भय उत्पादक दृश्य था। वर कह रहा है कि वह इस ग्रामीण लड़की की सुंदरता के वश में हो गया है। उसमें राजमहल का सौंदर्य नहीं है, वह श्रृंगार नहीं करती, परंतु उसमें प्राकृतिक सुंदरता थी। वह आगे वर्णन करता जाता है, मेरे मित्रों, जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो आप परमेश्वर में अपनी सुंदरता को देखने पाते हैं। आपकी आत्मिकता, आपकी पवित्रता और आपका जीवन जो परमेश्वर की निकटता में रह करके हरा भरा होता जाता है। इस प्रकार से आप अपने जीवन की गवाही के द्वारा भी दूसरों को मसीह के प्रेम में बता सकते हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको भी जांचने और परखने की आवश्यकता है कि क्या मैं सचमुच में प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं या करती हूं। यदि नहीं तो आज मुझे और आपको भी उसके निकट आने की आवश्यकता है। लोगों को मसीह के प्रेम के बारे बताने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि वे अपना जीवन किस ओर लेकर के जा रहे हैं। ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप उन्हें बताएं। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
हम तो जल जलाई ज्योति प्रेम।